લબ્ધિસાર ક્ષપણાસાર લેક્ચર નંબર 10 ઓમ નમઃ શિવાય નિમિચંદ સિદ્ધાંત ચક્રવર્તી દ્વારા રચિત લબ્ધિસાર ગ્રંથ હૈ. ઉસ પર પંડિત ટોડરનજીને સમ્યક જ્ઞાન ચંદ્રિકા લબ્ધિસાર ક્ષપણાસાર ભાષા ટીકા ઢુંઢારી ભાષા મેં લિખી હૈ, જિસકા હિન્દી અનુવાદ દેખતે હુએ અભી હમ પૃષ્ઠ સંખ્યા 30 પર આ ગયે. લબ્ધિસાર કે ભૂમિકા કા પ્રકરણ ચલ રહા હૈ ઓર ઉસમે અનેક અલગ અલગ જો સંજ્ઞાએ આતી હૈ, અલગ અલગ વિધાન હોતે હૈ, ઉસકી ચર્ચા ચલ રહી હૈ. 30 પૃષ્ઠ પર હમ નીચે સે દૂસરે પેરેગ્રાફ કો અભી પઢેંગે. પુનશ્ચ સમુદાય રૂપ એક ક્રિયા મેં જુદે જુદે ખંડ કરકે વિશેષ કરના ઉસકા નામ ફાલી હૈ. હમને દેખા થા જૈસે કાંડક ઘાત હોતા હૈ, સ્થિતિ કાંડક ઘાત, અનુભાગ કાંડક ઘાત, તો યે કાર્ય અંતર્મુહૂર્ત મેં પૂરા હોતા હૈ. ખંડ ખંડ કરના એને ઉસકા એક એક પાર્ટ બાય પાર્ટ બતાએંગે, ઉસકો પહેલે સમય મેં યે હોતા હૈ, દૂસરે સમય મેં, તીસરે સમય મેં, ઉસકો ફાલી કરેંગે. જૈસે કાંડક દ્રવ્ય કા, કાંડક દ્રવ્ય ની જીતને નિષેકો કા અભાવ કરના હૈ, ઉસકે જીતને નંબર ઓફ પરમાણુ હૈ ટોટલ, ઉસકો કહેંગે કાંડક દ્રવ્ય. કાંડક દ્રવ્ય કા કાંડકોત્કરણ કાલ મેં એક કાંડક ઘાત હોને કે લિયે જીતના કાલ લગતા હૈ, ઉસકો કહેંગે કાંડકોત્કરણ કાલ. તો કાંડક દ્રવ્ય કા કાંડકોત્કરણ કાલ મેં અન્યત્ર પ્રાપ્ત કરના, અન્યત્ર પ્રાપ્ત કરના એને વહાં કે અભાવ હોકર નીચે કે નિષેકો મેં આ મિલના. વહાં પ્રથમ સમય મેં પ્રાપ્ત ક્યા વહ કાંડક કી પ્રથમ પાલી. ઉપર કે નિષેકો મેં સે પ્રત્યેક નિષેક મેં સે કુછ ન કુછ પરમાણુ નીચે આયે હૈ, ઉન સબકો મિલકર કહેંગે પ્રથમ પાલી. દ્વિતીય સમય મેં પ્રાપ્ત ક્યા વહ દ્વિતીય પાલી ઇત્યાદિ. યે તો કાંડક ઘાત મેં ક્યા હોતા હૈ, ઉસ વહાં ફાલી કિસકો કહા વો બાત બતાએંગે. એસે હી ઉપશમન કાલ મેં હમને દેખા થા, કલ થોડી બાત કી થી કે પહેલે અંતર ક્યા જાતા હૈ, અંતર કે ઉપર જો નિષેક પડે હૈ ઉસકા ઉપશમન હોતા હૈ, વો ભી એક સમય મેં નહીં પૂરા હોતા હૈ, એક એક સમય કરકે અંતર્મુહૂર્ત મેં વો કાર્ય પૂરા હોતા હૈ. તો ઉપશમન કાલ મેં પહેલે સમય મેં જીતના દ્રવ્ય ઉપશમાયા, ઉપશમાયા કા અર્થ હોતા હૈ વો અભી ઉસકો નીચે નહીં લા સકતે, ઉદયાવલી મેં અપકર્ષણ વો કુછ નહીં, વો અપને જગહ મેં રહા રુકા રહેગા, તો ઉસકો કહેંગે ઉસકો ઉપશમાયા. વહ ઉપશમ કી પ્રથમ ફાલી હૈ, યહાં ભી નામ ક્યા હૈ ઉસકા ફાલી. જીતને પરમાણુ પહેલે સમય મેં ઉપશમિત હોય વો ઉપશમન કી પહેલી ફાલી કહેલાય, દૂસરે સમય મેં જીતને ઉપશમિત ઓર હો જાયેગે ઓર એક્સ્ટ્રા ઉસકો દ્વિતીય ફાલી કહેંગે. દ્વિતીય સમય મેં ઉપશમાયા વહ ઉસકી દ્વિતીય ફાલી ઇત્યાદિ. એસે હી અન્યત્ર જાનના. પુનશ્ચ અનેક નિષેકો કે પરમાણુ અન્ય નિષેકો મેં મિલાતે હૈ. હમને દેખા ના અભી ઉપર કે નિષેકો કા અભાવ કરકે યા જબ અપકર્ષણ હોતા હૈ તો વહાં સે કુછ નિકલે ઓર નીચે કે નિષેકો જૈસી સ્થિતિ હુઈ તો હમ કહેંગે નીચે કે નિષેકો મેં મિલાયા, કહેને કી પદ્ધતિ. તો કહેતે જો મિલાતે હૈ ઉસકો મિલાના કહેંગે, દેના કહેંગે યા નિક્ષેપણ કરના કહેતે. अलग अलग शब्द अलग जगह है, उसका अर्थ तो एक ही है। जिन निषेकों में देते हैं वे निषेक निक्षेपण रूप जानना। क्या कहते हैं? जिनमें दिया जाता है उन निषेकों को निक्षेप कहेंगे, और जिनमें नहीं दिया जाता उसको अतिस्थापना कहेंगे। यानी कि जिन निषेकों में देते हैं वे निषेक निक्षेपण रूप जानना, और जिन निषेकों में नहीं मिलाते वे निषेक अतिस्थापना रूप जानना। द्वितीय स्थिति के नहीं, जरूरी नहीं है, यानी वो तो वो कहां कितना प्रमाण होता है उसकी बात आएगी कभी, क्योंकि अभी सामान्य से हम कहेंगे आवली प्रमाण होता है तो अतिस्थापना वली कहेंगे, इतनी बात अभी ख्याल में रखना। वो जघन्य उत्कृष्ट कैसे कैलकुलेट करना क्या है उसकी चर्चा जब आएगी तब उसकी चर्चा करेंगे। द्वितीय स्थिति के निषेकों के द्रव्य को अपकर्षण करके प्रथम स्थिति के निषेकों में मिलाते हैं उसे आगाल कहते हैं। अभी जरा आगाल और प्रत्यागाल देखेंगे हम। आगाल किसको कहें? फिर हमने देखा था कल कि दर्शन मुनि की जो उपशमना होती है, औपशमिक समय तो प्राप्त होता है, तो पहले अंतर किया जाता है। तो अंतर किया जाता है तो क्या होगा? वो निषेकों में बीच में अंतर किया ना, तो उसमें दो भेद हो जाते हैं। पहले कंटिन्यूएशन में स्थिति थी, अभी बीच में गैप हो गया। क्यों? यहाँ के परमाणु नीचे भी और ऊपर भी चले गए। अभी इसके होने के बाद ये जब तक कार्य उपशमाने का चलता रहेगा तो जो उपशमित नहीं हुए है उन परमाणु का क्या होगा? तो द्वितीय स्थिति के परमाणु यहाँ पर भी अभी अपकर्षण चल रहा है, अपकर्षण होकर पहली स्थिति में आ मिलेंगे, क्योंकि पहली स्थिति अभी अंतर्मूल प्रमाण है तो उसमें ऊपर से नीचे आना चालू रहेगा, उसको कहेंगे आगाल। अधोबलन का अर्थ होता है नीचे का एक एक निषेक गल जाना, उदय में आना। अधो यानी नीचे का, गलन यानी गल जाना, यहाँ वो बात नहीं है। आगाल का अर्थ है द्वितीय स्थिति के प्रति परिस्थिति हुई, बीच में गैप है, गैप को लांग कर नीचे आ जाना और नीचे के निषेकों में मिलना, उसको कहेंगे आगाल। देखो फिर इसको पढ़ेंगे।
ऊपर के सभी निषेक
एक समय में नहीं होते, ये कार्य चल रहा है। जब अंतर हुआ तो उपशमने का कार्य चालू हो गया, परंतु बाय दैट टाइम ये नीचे आते ही रहेंगे ना, अपकर्षण तो चालू ही था तब तक। जब अंतिम फाली उपशम आ जाएगी या जब यहाँ दो अवली प्रमाण काल बाकी रहेगा तब ये रुक जाएगा आगाल, तब तक वो अपकर्षण उत्कर्षण चलता रहता है। क्योंकि अभी हम दर्शन मुनि बात करते हैं, यहाँ तो अभी मिथ्यात्व के परमाणु का उदय भी चल रहा है और मिथ्यात्व का नया बंध भी होगा यहाँ पर। जब तक ये अंतिम समय उदय में आएगा तब तक नया मिथ्यात्व का बंध भी होगा। तो नया बंध कितना होगा? तो ये अंतर के अंतर से भी उसका आबादा का ज्यादा होगा। अब यहाँ के कुछ परमाणु उत्कर्षण से ऊपर भी, यहाँ के भी ऊपर चले जाएंगे, उदयावली के ऊपर के, उसको कहेंगे प्रत्यागार। अभी हमने पढ़ा नहीं प्रत्यागार, इसमें से पढ़ेंगे उत्कर्षण होने। देखो हमेशा क्या है, आप कहेंगे नीचे के ऊपर कैसे जाएंगे उल्टे, उदयावली के ऊपर नहीं जाते। उदयावली में जो एंटर हुए हैं वो तो उदयावली में रहते हैं, परंतु अंतर्मूर्त प्रमाण द्वितीय स्थिति है, उदयावली को छोड़ दो और ये नया बंध होता है उसके साथ उदयावली के ऊपर के निषेकों में से कुछ परमाणु उत्कर्षण होकर ऊपर चले जाते हैं। ये ऐसा आगाल प्रत्यागाल चलता रहता है। कब तक? जब यहाँ जाके दो आवली प्रमाण काल बाकी रहेगा तब तक, बाद में वो रुक जाता है। अब यहाँ देखो, हम यहाँ से पढ़ेंगे, ये नीचे से चौथी लाइन में फिर पढ़ती हूँ। द्वितीय स्थिति के निषेकों के द्रव्य को मिला ना, 30 पेज पर चल रहे अपनी बात। अपकर्षण करके प्रथम स्थिति के निषेकों में मिलाते हैं उसे आगाल कहते हैं। प्रथम स्थिति के निषेकों के द्रव्य को उत्कर्षण करके द्वितीय स्थिति के निषेकों में मिलाते हैं उसे प्रत्यागाल कहते हैं। अभी उन्होंने तो बस सामान्य से बात की, परंतु जहां जहां उत्कर्षण होता है वहां वहां नया बंध होना चाहिए। अब प्रथम स्थिति में मिथ्यात्व के परमाणु पड़े हैं, अभी इसका उदय चल रहा है, इसलिए यहाँ मिथ्यात्व का बंध भी है। जब तक ये चलता रहेगा उदय, तब तक उसका बंध है। तो बंधने के वाले के साथ कुछ परमाणु ऊपर चले जाएंगे, स्थिति बढ़ेगी उसकी, इसको कहेंगे प्रत्यागाल। ये यहाँ अंतर्मूर्त प्रमाण पहली स्थिति थी, एक 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 गलते गलते जब दो आवली प्रमाण काल बाकी रहेगा तब ये आगाल और प्रत्यागाल दोनों रुक जाएंगे। भले वहां भी बंद है तो भी वो नहीं ऊपर जाएंगे और ना ही ऊपर के नीचे आएंगे, वो रुक जाता है आगाल प्रत्यागाल।
ये आगाल प्रत्यागाल रुकने के बाद उपशम चालू हो जाएगा?
नहीं नहीं नहीं, उपशम तो ऑलरेडी चालू हुआ था, अंतरकरण होने के पश्चात इमीडिएट उपशम चालू हुआ है, उसके लिए अंतर्मूर्त लगता है। तब तक उपशम चालू नहीं होता। देखो ये अंतरकरण था, अंतरकरण होने के लिए भी एक समय में, दो समय में, तीन समय में ये ऊपर नीचे हुआ, ये तो अंतरकरण के काल में चला गया। अंतरकरण पूर्ण हुआ उसके पश्चात नहीं, क्योंकि अभी अंतर पूरा हुआ ही नहीं ना, तो द्वितीय स्थिति नहीं है, कंटिन्यूएशन में स्थिति है, उसको अपकर्षण चल ही रहा है वहाँ
पर।
हाँ हो रहा है,
उसको
क्यों नहीं कहें, क्योंकि अभी बीच में गैप है, गैप को जम करके आएगा तो ही हम आगाल कहेंगे, और गैप को जम करके ऊपर चला जाएगा तो प्रत्यागाल कहेंगे। अभी गैप हुई नहीं तब तक उसको आगाल प्रत्यागाल नाम नहीं देंगे, अपकर्षण उत्कर्षण कहेंगे सामान्य से। अब आगे की बात अब कुछ कहते हैं, 31 पृष्ठ पर विवक्षित के काल का जो प्रमाण, विवक्षित के ने जिस हाँ आपका कुछ प्रश्न है, अंतरकरण यानी ये जो अंतर है, ये जो हुए थे यहाँ निषेक थे पहले, अभी उसके क्या हुआ, थोड़े थोड़े करके कुछ नीचे दिए कुछ ऊपर चले गए, और यहाँ निषेक नहीं रहे, अभी इसको अंतर किया, गैप तैयार, खिरे नहीं, वो जीव की सत्ता में है अभी, अभी जो एकदम उदय के समय में दिया वो उसके साथ खिरेगा, जो ऑर्डिनरी वो सत्ता में पड़े।
उस समय जो बंद होता है उसका क्या, वो बंद नीचे से नहीं होगा,
यहाँ तो आबादा काल है और बंद यहाँ अंतर अंतर की है ना, उससे भी आबादा का अंतर्मूर्त बड़ा है, भले अंतर्मूर्त वाली आबादा है परंतु वो बड़ी है, नहीं तो यहाँ अगर इतनी मानेंगे तो इसके बीच में भी निषेक रचना हो जाएगी, ऐसे नहीं नहीं। आगे बढ़े, इसके तो डिटेल्स आएंगे जब जाके प्रथम उपशम सम्यक को हम सीखेंगे ना, तब बहुत विस्तार से इसकी बात चलेगी। आपके कोई हाँ, प्रत्याज्ञा जब है तो उसके लिए प्रत्याज्ञा नहीं उत्कर्ष, उत्कर्षण के लिए हमेशा कहीं पर भी उत्कर्षण हो नया बंध होना ही चाहिए, तभी उत्कर्षण हो सकता है। यानी ऐसे ऑर्डिनरी बंद नहीं और उत्कर्षण होगा ऐसी बात नहीं होती, अपकर्षण तो होता हो सकता है, उत्कर्षण नहीं। अब विवक्षित के काल का, विवक्षित यानी जिस प्रोसेस की बात कर रहे हो उस पर्टिकुलर प्रोसेस का जो काल है, जो प्रमाण है वही उसका काल है, यानी एक स्थिति कांडक घात होने के लिए जितना समय लगता है उसको स्थिति कांडक का काल या स्थिति कांडकोत्करण काल कहेंगे। उपशमन होने के लिए जितना अंतर्मुख काल लगता है उसको हम उपशम काल कहेंगे, अंतरकरण करने के लिए जितना काल लगता है उसको अंतरकरण काल कहेंगे, तो उसका काल कहलाएगा। जैसे एक कांडक का घात करने का जो काल, उसका नाम कांडकोत्करण काल है। वहां प्रथम समय में प्रथम फाली का पतन होता है, पतन होने ने भी नीचे के निषेकों में आ मिलना, सत्व का नाश नहीं होता। नीचे के निषेक में आए कांडक में होता है, कांडक में होता है ऊपर के, परंतु घात किसका हुआ? निषेकों का हुआ, परमाणु का नहीं। वो द्रव्य तो रहा सत्ता में, हमने देखा था जब अभी हमने देखा था ना, स्थिति कांडक घात होता है तो क्या होता है, ऊपर की इतनी स्थिति कट होकर वो नीचे में सर्वत्र दिए जाएंगे ना, इसके ये नीचे के नीचे बड़े बड़े हो रहे, सत्ता में से गया नहीं, वो सत्ता का अभाव नहीं हुआ, इतनी स्थिति का अभाव हुआ, इतने निषेकों का अभाव हुआ, उसके परमाणु सब नीचे रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसका, यानी नीचे के निषेक बड़े बड़े होते चले जाएंगे। वहाँ प्रथम समय में प्रथम फाली का पतन होता है, अर्थात नीचे के निषेकों में प्राप्त होना होता है, नीचे के निषेकों में आ मिले। इसलिए उस प्रथम समय को प्रथम फाली का पतन काल कहते हैं। पहला जो समय है उस प्रोसेस का, स्थिति कांडक घात का जो पहला समय है वो क्या है, उस एक समय में पहली फाली का पतन होता है, वो प्रथम फाली पतन काल कहेंगे। द्वितीय समय को द्वितीय फाली का पतन काल कहते हैं। इसी तरह अंत समय को, यानी वो जो अंतर्मुहूर्त का अंत समय है, क्योंकि उसके बाद और नया कांडक घात शुरू होगा, तो जो अंतिम समय है एक स्थिति कांडक घात का जो अंतिम समय है, चरम फाली यानी अंतिम फाली का पतन काल कहते हैं उसको। यानी उस समय जितने बाकी शेष है वो सारे नीचे आते। देखो क्या होता है, जरा देख लो, यहाँ इतनी स्थितियां थी, निषेक थे, पहले समय में पतन हुआ तो इतने निषेकों के परमाणु नीचे आए, सत्ता की स्थिति उतनी बनी रही, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि एक भी परमाणु हो तो उसकी स्थिति कहलाएगी। दूसरे समय में और चले गए, तीसरे समय या अंतिम समय में इतने, तब तक तो स्थिति वैसी की वैसी रही, और ये एक समय में इतना सारा स्थिति का घात हुआ। कहने के लिए कांडक का प्रोसेस अंतर्मूर्त चला, परंतु जब तक कांडक में एक एक फाली घिरती गई तब तक निषेक अपने पोजीशन में बना रहा, अंतिम फाली में उसका पूरा पतन हुआ तब स्थिति एक साथ कट हो गई, फिर दूसरी स्थिति कांडक घात चालू हो जाए। तो अंत समय को चरम फाली का पतन काल कहते हैं। उसके पूर्व समय को यानी प्रायर समय, पूर्व समय द्विचरम, चरम और द्विचरम, अंत और उपांत, सेकंड लास्ट, द्विचरम फाली का पतन काल कहते हैं। जिस काल में अंतरकरण करते हैं, ये जो करने की क्रिया है ना, कोई प्रोसेस, उसको करण नाम दिया जाता है, तो अंतरकरण यानी गैप तैयार करना, तो जिस काल में अंतरकरण करते हैं उसका नाम अंतरकरण काल है। जिस काल में क्रोध का वेदन करते हैं, वेदन कर यानी उसका उदय होना, अर्थात उसके उदय को भोगते हैं, उसका नाम क्रोध वेदक काल है, ऐसे ही अन्यत्र जानना। देखो यहाँ क्या कहा, क्रोध का वेदन करता है, जीव तो पर का वेदन कर ही नहीं सकता, यहाँ तो राग का करे तो करे, हम कहेंगे उसको उसका राग का वेदन चल रहा है, क्रोध का वेदन चल रहा है, जो उदय होता है ना उसका वेदन कहलाता है। ये संयोगों का कोई वेदन नहीं करता, उसका ज्ञान कर सकता है, ज्ञान और वेदन में अंतर है, ख्याल में आए कि नहीं। एक डॉक्टर, अभी डॉक्टर है ना, तो दूसरे को पेशेंट को पीड़ा हो रही, उसका आपको ज्ञान हो रहा है, उसका वेदन वेदन तो जिसका उसको हो रहा है। अभी आगे कौन सा, रोध वेदक काल वैसे अंतर्मुर्त होता है, अभी उसमें बहुत वेरिएशंस है जिसको व्याघात कहते हैं, तो एक समय में वो पलट भी सकता है। हाँ यानी उसको पता चलता है, फिर भी एक समय का भी होगा तो वेदन काल तो कहेंगे उसको, क्योंकि केवली तो जानते हैं इसके यहाँ एक समय का उदय था, जैसे क्रोध मिटकर मान चालू हो गया और एक समय में जीव मर गया और अन्य भाव में चला गया, वहाँ अन्य कषाय का उदय शुरू हुआ, तो यहाँ एक समय के लिए उसका वेदन रहा कि नहीं रहा, इस तरह से केवली जानेंगे और आगम के द्वारा उसका कथन भी होगा। आवली मात्र काल का या उतने ही काल संबंधी निषेकों का नाम आवली है। ये निषेकों को भी आवली कहते हैं, जैसे हमने उदय के समय से लेकर आवली प्रमाण जो समयों का माप है ना, तो इतने निषेकों को हम क्या कहेंगे, उदयावली। आवली तो एक काल का यूनिट है, परंतु उतने निषेकों को भी हम आवली कहेंगे, जैसे उदयावली होती है, बंद के बाद एक आवली प्रमाण काल जाता है उसको कहेंगे बंधावली, उसी को नाम है अचलावली, जिसमें निषेक नहीं देते ऐसे आवली प्रमाण निषेकों जो परमाणु नहीं देते उसको कहेंगे अतिस्थापनावली, ऐसे अलग अलग नाम आते हैं आवली। वो चिष्टावली काल हमने देखे थे कि जब संक्रमण होते होते एक आवली प्रमाण निषेक बाकी रहे तो उसको हमने हारी में तो उसको हमने क्या कहा, उच्चिष्ठावली। वहां वर्तमान समय से लेकर आवली मात्र काल को आवली तथा उनके निषेकों को भी आवली या उदयावली कहते हैं। उसके ऊपरवर्ती आवली को द्वितीयावली या प्रत्यावली कहते हैं। क्या कहा, उदय के समय से लेकर एक आवली उसको कहेंगे उदयावली, और उसके इमीडिएट ऊपर की जो आवली प्रमाण निषेक है उसको कहेंगे द्वितीयावली या प्रत्यावली, क्योंकि अभी तो हमने जो आकाल प्रत्याकाल की बात की थी ना, तो ऐसा कहेंगे उदयावली और प्रत्यावली बाकी है तब आकाल प्रत्याकाल रुक जाता है, तो यहाँ इसलिए उसके नाम बताए। बंद समय से लेकर आवली तक यानी आवली प्रमाण काल तक उदीर्णा आदि क्रियाएं नहीं हो सकती, ना उसमें उदीर्णा होती है ना संक्रमण से अन्य रूप होते हैं, तो बंधे हुए परमाणु अपने रूप से ही रहते हैं एक आवली काल तक, बाद में उसमें ये सारे प्रोसेसेस चालू हो जाते हैं। उसका नाम बंधावली, अचलावली या आबाधावली है, तीन नाम उसी के लिए बताए। बंधक होने के पश्चात एक आवली काल तक बंधे हुए परमाणु में, पूर्व में बंधे थे सत्ता में पड़े थे उसमें अन्य अन्य प्रोसेसेस चल रहे थे, परंतु अभी जो समय प्रबद्ध बंधा है उसके जितने अनंत परमाणु बंधे हैं उसमें कोई प्रोसेसेस आवली काल तक नहीं होते, बाद में नियम से चालू होते हैं, उदीर्णा भी चालू होती है, संक्रमण भी चालू होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस चालू होते हैं, तो उसको कहेंगे बंधावली, अचलावली या आबाधावली, तीनों का अर्थ है। इन्हें इतनी आवली प्रमाण आबाधा छोड़कर उदीर्णा के द्वारा उदय चालू होता ही है, प्रत्येक कर्म ही लगाया मैंने, इन्हें ऐसा लगता है कि उदीर्णा नहीं होती हो, वो तो मोक्ष मार्ग है, इन्हें जो ऊपर के जो गुणस्थानों में जो उदीर्णा अधिक बढ़ती है उसकी बात अलग है, ये सामान्य से उदीर्णा सभी कर्मों में होती है। अब आयु और उसके लिए कंडीशन क्या है, जिसका उदय है उसकी उदीर्णा, नहीं तो आप कहेंगे आयु कर्म बंधा आवली में उसका भी उदय चालू होगा अपना, ये भी होता वो नहीं होता, जो बंधा हुआ आयु है वो इस भव के ये भव समाप्त होने पर उसका उदय चालू होगा, और उसके उदय चालू होगा तो उसकी उदीर्णा भी, कुछ परमाणु तो ऐसे भी ऊपर से नीचे आकर खिलना चालू हो जाएंगे तत्काल एक ही समय में। अब आगे पढ़ेंगे, पांचवी लाइन पढ़ रहे हैं, द्रव्य का निक्षेपण करते हुए, निक्षेपण करना है एक जगह से अन्यत्र कहीं मिला देना, अभी हमने पढ़ा ना उसको देना कहेंगे, मिलाना कहेंगे, निक्षेपण करना कहेंगे। द्रव्य का यानी परमाणु, द्रव्य का निक्षेपण करते हुए जिन आवली मात्र निषेकों में निक्षेपण नहीं निक्षेपण करते, क्या कहा, द्रव्य ऊपर के निषेकों का द्रव्य नीचे मिला रहे हैं। अभी हम तो अपकर्षण की बात करेंगे, उत्कर्षण में भी ऐसी अति स्थापना होती है, तो ऊपर से नीचे देते हुए क्या होता है, अपने नीचे जो आवली प्रमाण का निषेक है उसमें नहीं दिया जाएगा, उसके नीचे सर्वत्र दिया जाएगा, यानी उसको जम करके नीचे सर्वत्र देंगे, उसको क्या कहेंगे, अति स्थापना वाली। हाँ,
ये जो शब्द प्रयोग किया है
निषेकों
में
नहीं निक्षेपण करते,
निक्षेपण नहीं करते,
ठीक है बाद में ले लो, उसका नाम अति स्थापना होगी। स्थिति सत्व घटते हुए क्या कहते हैं, स्थिति सत्व जब घटता चला जाता है, आवली मात्र अवशेष रह जाए, हमने कल ही देखा था, तो उसका नाम उच्चिष्टावली है। देखो अभी अभी कौन कौन सी आवली देखी, उदयावली देखी, प्रत्यावली देखी, बंदावली, अचलावली, आबादे, एक एक नाम है उसको देखा, अति स्थापनावली देखी, उच्चिष्टावली देखी। जिस आवली में संक्रमण पाया जाता है वह संक्रमणावली, और उपशम करना पाया जाता है वह उपशमावली है, इत्यादि ऐसे ही अन्यत्र जानना, यानी जहां जिसका नाम आएगा वहां बताएंगे, परंतु ऐसे इतने ही समझना कि वहां आवली मात्र निषेकों की बात है। अंत, अभी नया कुछ विशेष संज्ञा बता रहे, अंत नाम अंदर का है, अंदर यानी लेस देन, जैसे अंतर मूर्त का अर्थ क्या है, लेस देन मूर्त, अंदर यानी उसके अंदर की संख्या जो बतानी है। अंतर मूर्त शब्द हम कितनी बार देखते हैं, मूर्त का अर्थ क्या होता है, दो घड़ी, दो घड़ी यानी कितने मिनट, 48 मिनट, उससे कम, उसके अंदर का यानी लेस देन 48 मिनट्स, वो हो जाएगा अंतर मूर्त। तो अंत नाम अंदर का है, उक्त प्रमाण से कुछ कम हो वहां अंत संज्ञा है, वहां कोड़ा कोड़ी के नीचे और कोड़ी के ऊपर, उसको अंत कोड़ा कोड़ी कहते हैं। क्या कहा, ये अंत कोड़ा कोड़ी सागर, ऐसा बहुत बार शब्द आता है, अंत का अर्थ होता है कम, किससे कम, कोड़ा कोड़ी से कम, कोड़ा कोड़ी किसको कहना, हाँ करोड़ गुना करोड़, कितने जीरो हो जाते हैं, अच्छा एक करोड़ में एक के ऊपर 7 जीरो है, और कोड़ा कोड़ी में किसके ऊपर, एक के ऊपर 10 के ऊपर 14,
नहीं नहीं एक के ऊपर 14, नहीं माने ही इज टेलिंग समथिंग डिफरेंट, 10 रेस टू 14,
अच्छा
दैट इज ऑल राइट, बट नाउ
हम जब लिखते हैं, लिखते हैं तब की बात है, डिजिट्स बनाते उसके, 1:14 नहीं हुआ, एक को रहे, नहीं नहीं वो तो एक ही रहेगा, उसकी बात नहीं है, पर जब हम लिखते हैं एकम दशम सहस्र ऐसे हम लिखते हैं ना राइट से लेफ्ट, तब किस कितने उसके जीरो कितने आ गए उसके ऊपर, 14 जीरो। आप कुछ कहना चाहते हैं,
करते
ये सब करोड़ों को नापने में बहुत होशियार है, हाँ। कोड़ी के ऊपर, हाँ ये निश्चित है, दोनों ओर से है ना, करोड़ से ऊपर और कोड़ा कोड़ी से नीचे, ऐसी संख्या को अंत कोड़ा कोड़ी कहेंगे, अंत कोड़ी अभी उसको लाख लेंगे, लाख के ऊपर और करोड़ के नीचे, अंतक करोड़ कहेंगे, अंतर लाख कहेंगे अभी जगह लगाते जाओ। मुहूर्त से कम और आवली से अधिक, क्योंकि हमने देखा ना जघन्य अंतर्मुहूर्त कितना है, आवली में एक समय मिला तो उतना है, उसको अंतर्मुहूर्त कहते हैं। यानी उसके नीचे की भी लिमिट बता दिए। दिवस से कुछ कम उसको अंतर दिवस कहते हैं, है ना। अभी जो हमने जिससे कम करना है उसके आगे अंतर लगा दो। तीन के ऊपर और नौ के नीचे उसका नाम पृथक्त्व है। ये तो सामान्य से पृथक्त्व की बात बताई, बिटवीन 3 to 9। अथवा कहीं बहुत हजारों का भी नाम पृथक्त्व है। क्या कहा? बहुत हजारों, इन्हें हजारों को भी पृथक्त्व कहेंगे। पृथक्त्व यानी कुछ। बिटवीन 3 to 9 उसको पृथक, नहीं 3 to 9 भी कहेंगे। वैसे तीन के अभी जैसे वो परिहार विशुद्धि उसमें तो 8 वर्ष के लिए वो कहा है ना, इतने पृथक वर्ष 8 वर्ष के, और अलग अलग जगह उसका उसकी संख्या भी अलग अलग आती है। जैसे हम देखते हैं ना लगातार मनुष्य भोग कितने बार मिलता है, या उसके कितना है पृथक्त्व, पृथक्त्व करोड़, हाँ करोड़ पूर्व, पृथक्त्व पूर्व कोटि, तो उसमें हमने स्त्री के 8, पुरुष के 8, नपुंसक के 8, फिर बीच में का पर्याप्त का फिर 8, 8, 8, तो इतने पूर्व कोटि पृथक्त्व होते हैं। और अंतिम भाव 3 पल्ले का गिनेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये 24 24 हुए, 48 उसमें से एक कम कर दिया तो 47 करोड़ पूर्व को यहाँ पृथक्त्व पूर्व करोड़ कहेंगे या करोड़ पूर्व कहेंगे। तो यहाँ लिखा ना हजारों के लिए भी पृथक्त्व शब्द आता है, आ सकता है। वह यथासंभव जानना, जहाँ का जो विषय है वहाँ जो उसकी संख्या अपेक्षित है वहाँ उसका नाम है पृथक्त्व। कहीं दृष्टांत अपेक्षा संज्ञा होती है, यानी कहीं कहीं जो नाम आता है वो कैसे है, दृष्टांत का ही नाम उसको दे दिया जाता है। अभी उसकी बताएं, जैसे गाय की पूंछ क्रम से घटती होती है, ये तो सबने देखी हुई ना, ऊपर जाड़े और नीचे पतली होती है, यानी वो इसको थिन होती है, तो उसको गोपुच्छ कहेंगे। वैसे यहाँ एक एक चय घटते क्रम से निषेक पाए जाते हैं, वहां गोपुच्छ संज्ञा है। अब गाय की पूंछ तो नीचे से ऊपर से नीचे घटती है, परंतु यहाँ बस घटते घटने का नाम ही गोपुच्छ है। ये इस तरह से ऐसे निषेक रचना पाई जाएंगी। हमने कल देखा था चय घटते क्रम से, और वो उसका फाइनल रिजल्ट ऐसा दिखेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, ये गोपुच्छ रचना। ये निषेकों के लिए भी निषेक रचना को ही गोपुच्छ रचना कह देते हो आप। द्रव्य देने में जहां ऊंट की पीठ समान हीन अधिकपना होता है वहां उष्ट्रकूट संज्ञा है। अभी ये बातें आगे चलकर आने वाली है, अभी यहाँ तो समझेगी नहीं शायद। ये अपूर्व स्पर्धक आदि जब आगे चलकर बातें आई ना, तो यहाँ जो रेगुलर जो निषेक होते हैं, रेगुलर जो अनुभाग की रचना होती है उससे नीचे और नए नए तैयार होते हैं, तो ये नए नए तैयार होते तो ऐसे हो जाएगी। उसमें भी अपकर्षण आदि होता है तो कैसे होगा, अभी इसमें भी दिया जाएगा और ऊपर भी दिया जाएगा। तो यहाँ जहाँ ये अभी यहाँ तक थे और यहाँ अधिक थे, तो जहाँ हीनाधिक थे तो वहाँ वो दिए जाकर फाइनल रिजल्ट ऐसा दिखेगा। दिए जाने वाले द्रव्य में हीनाधिक दिखेंगे, यहाँ कम दिया यहाँ ज्यादा दिया, फिर यहाँ कोई बीच वाला निषेक ज्यादा होगा, यहाँ कम दिया यहाँ ज्यादा दिया, क्यों, क्योंकि फाइनली वो गोपुच्छ दिखना चाहिए। तो दिए जाने वाले द्रव्य के लिए ये उष्ट्रकूट कहेंगे, जैसे ऊंट की पीठ ऊपर नीचे होती है वैसे यहाँ दिया जाने वाला द्रव्य ऐसा दिखेगा, और दृश्यमान द्रव्य गोपुच्छ जैसे दिखेगा। यहाँ लिखा है ना, जहाँ द्रव्य देने में लिखा है दिखने में नहीं कहा, ये दीयमान द्रव्य में ऐसा होता है, उसको दिया जाने वाले द्रव्य को दीयमान भी कहते हैं और जो दिखता है उसको दृश्यमान भी कहते हैं। तो ऊंट की पीठ समान हीन अधिकपना होता है, वहां उष्ट्रकूट, उष्ट्र यानी ऊंट, और उसके पीछे होते हैं पीठ पर, उसको कूट कहेंगे, संज्ञा है। जहां समान पट्टी के आकारवत सर्व स्थानों में समान रचना होती है वहां समपट्टिका कहते हैं इत्यादि जानना। अभी वही जो मैंने बताई थी, नीचे नीचे जो नए नए अनुभाग वाले जो वहां रचना होती है वहां क्या कहते हैं, उसको समझाने के लिए कहा कितना दिया, तो यहाँ पूर्व में इतना था तो उसके अनुसार यहाँ दिया और बाजू में एक्स्ट्रा दिया, वो समझाने के लिए कहेंगे ये समपट्टिका द्रव्य। जब उसका विषय आएगा तो ये अधिक खुलेगा, अभी केवल इमेजिन करने से कुछ नहीं पता चलेगा। समपट्टिका का अर्थ क्या है, उसी प्रमाण में समान प्रमाण में। इस प्रकार जैसे व्याकरण में कितने ही संज्ञा तो संज्ञा संधि में कही, कितने ही संज्ञा जहां प्रयोजन हुआ वहां कही, व्याकरण में भी कहते ना कुछ संज्ञा पहले बता देते हैं और कुछ ऐसी है कि जहां उसका विषय आता है वहां बता देते हैं, वैसे इस ग्रंथ में कितनी ही संज्ञा तो यहाँ पीठ बंध में कही है, इसको पीठ बंध का भूमिका हाँ इंट्रोडक्टरी यहाँ जो लिखा है, जो आने वाले जो नाम है उसको यहाँ पहले भी उससे हमें परिचित कराते हैं। कितनी ही संज्ञा आगे शास्त्र में जहाँ प्रयोजन होगा वहाँ कही जाएगी, क्योंकि इतने सारे अलग अलग प्रोसेस है कि अभी पूरा यहीं पर बताएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जहाँ जो विषय चलता है वहाँ उसका वर्णन करेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आएगा, फिर भी मुख्य मुख्य संज्ञा यहाँ बता दी। यहाँ द्रव्य का विभाग करने के विधान को कारणभूत करण सूत्र कहते हैं। द्रव्य का विभाग यानी विभाजन करना कहो, या उसको जो अभी जो निषय रचना आदि हो जाएगी वो किस तरह से कहाँ कितना द्रव्य दिया जाता है, एक गोपुच्छा तो दिखाई देती है, नीचे के निषेक बड़े हैं ऊपर के छोटे हैं, तो वहां पूरे जितने परमाणु उसको द्रव्य कहेंगे, जितना घटने का प्रमाण उसको क्षय कहेंगे, आदि आदि बातें बताएंगे अभी। यानी ये क्या है, टर्मिनोलॉजी है। यहाँ जो परमाणुओं का डिस्ट्रीब्यूशन होता है निषेकों में उसको समझाने के लिए ये टर्मिनोलॉजी गणित की, क्योंकि यही शब्द हमने अभी अभी कर्मकांड में भी देखे थे, स्थितिबंध अध्यवसाय में भी देखे, अनुभाग बंध अध्यवसाय में भी देखे, योग स्थानों में भी देखे, तो यही संज्ञा आती अलग अलग। अपना तो यह कर्म से यह विषय चलेगा तो बताते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, द्रव्य का डिवीजन नहीं होता है, परंतु द्रव्य ने परमाणु उसका विभाजन, विभाजन यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन। यानी पूरा जो हम कहें टोटल द्रव्य, नहीं जितने कर्म बंधे है ना, कर्म परमाणु कितने बंधे है,
अभी समझो मोह का संक्रमण चल रहा है, मोह का कम होना, मोह के परमाणु का डिस्ट्रीब्यूशन।
हाँ, अभी तो पहले में पहले बंधा हुआ द्रव्य कहाँ कितना दिया जाता है उसकी बात पहले बताएंगे, संक्रमण आदि की बाद में बताएंगे, पहले तो कर्मों की जो रचना होती है, स्थिति रचना, निषेक की रचना। हाँ, तो निषेक में किस तरह से अरेंजमेंट है उसको बताएंगे। विभाजन यानी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बंटवारा हम करेंगे, उसको बंटवारा, वो अच्छा शब्द है। तो विधान को कारणभूत करण सूत्र, यानी वो करने के लिए जो कुछ करण सूत्र है, गणित के जो फॉर्मूले है, करण सूत्र यानी फॉर्मूले, उसको बताएंगे। वहां नाना गुणहानि में चय घटते क्रम रूप द्रव्य के विभाग का विधान कहते हैं। ये विभाग ने यहाँ फिर भी बंटवारा समझना, परमाणुओं का बंटवारा। हमने देखा था कि जब कर्म बनता है और सत्ता में पड़ा रहता है तो बंधने वाले की जो रचना होती है तो उसको हम कहीं ना समय प्रबद्ध किस तरह से हुआ। तो पहले में पहले नीचे आबादा थी, फिर वो एक निषेक, दो निषेक, तीन निषेक, इस तरह से उसका एक कर्म समय में बंधे हुए कर्म परमाणु इस तरह से हुए। तो जो टोटल नंबर ऑफ परमाणु उसको द्रव्य कहेंगे, ये पहला निषेक। दूसरे में थोड़ा कम है तो जितना कम है उस कम का प्रमाण उसको चय कहेंगे। तीसरे में उतना ही घटता है और एक घटता है और घटता है और घटता है, ऐसे घटते घटते जहां मान लेते हैं 512 थे और ये 256 हो गए, तो एक गुणहानि, 256 थे घटते 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 128 हुए, दूसरी गुणहानि, घटते घटते 64 हुए, तीसरी गुणहानि। इस तरह से एक एक गुणहानि में आधा आधा होता चला जाएगा, इसका टोटल द्रव्य भी आधा होता है एक एक गुणहानि। ऐसे जितने नंबर ऑफ गुणहानियां हैं उसको कहेंगे नाना गुणहानि। तो इसमें ये रचना कैसे होती है उसके लिए ये टर्मिनोलॉजी है। देखो वहां नाना गुणहानि में चय घटते क्रम रूप, हमने देखे ना ये चय घटते क्रम रूप से द्रव्य दिया जाएगा ऊपर ऊपर के निषेकों में। द्रव्य के विभाग का विधान कहते हैं, द्रव्य के बंटवारे का यहाँ विधान यानी प्रोसेस या उसका जो मेथड जो है पद्धति है उसको यहाँ बताएंगे। पहले यानी इसके लिए क्या समझना चाहिए, वो जो हम यहाँ संज्ञाएं आएगी कुछ टर्म्स हम यूज करेंगे। तो कहते हैं द्रव्य, स्थिति, गुणहानि, नाना गुणहानि, दो गुणहानि, अन्योन्य अभ्यस्त राशि, इनका स्वरूप और प्रमाण जानना, ये छह बातें जानना चाहिए। उसका अर्थ क्या है और उसका प्रमाण क्या है, स्वरूप क्या है, किसे कहना, ये समझना आवश्यक है। प्रथम संबंध में स्थिति रचना की अपेक्षा कहते हैं, यानी अभी स्थिति रचना में इन संज्ञाओं का क्या अर्थ होता है उसको कहेंगे। अनुभाग की रचना में भी यही टर्मिनोलॉजी होगी परंतु वहां उसका प्रमाण अलग होगा, यहां उसका प्रमाण अलग होगा। यहां स्थिति रचना में हम देख रहे हैं पहले में पहले, अभी हमने देखे ना निषेक के जो रचना होती है वो निषेक रचना में किसको द्रव्य कहना किसको स्थिति कहना उसकी बात अभी देखेंगे। यहां पर विवक्षित समय में ग्रहण किए हुए, हर समय में बंध चलता है तो एक समय में जीव अनंत परमाणु ग्रहण करता है। हमने पहले देखा था एक समय में अनंत कारमाण वर्गणा और एक एक कारमाण वर्गणा में अनंत अनंत परमाणु, उस अनंत का प्रमाण क्या देखा था याद है? हाँ बहुत अच्छा, उतना अनंत है जो अनंत जो संग खास है, कैसा है पर्टिकुलर कि अभव्य राशि से अनंत गुणा वाला अनंत है और सिद्ध राशि के अनंत में भाग वाला है। तो अभव्य राशि कितनी अनंत है, जगन्य युक्त अनंत प्रमाण अभव्य जीव है, उससे भी अनंत गुणे। अभी वो जो कारमाण वर्गणा का प्रमाण जो है और कारमाण वर्गणा में परमाणुओं का प्रमाण है उसकी बात है यहाँ पर, तो उसको कौन सा अनंत कहेंगे? नहीं नहीं उसको कोई नाम दे देना, यहाँ तो आपने कह दिया अभवे कितने हैं, तो जघन्य युक्तानंद को अनंत गुना करो तो क्या होगा? अनंत अनंत होगा, क्योंकि जघन्य युक्तानंद को जघन्य युक्तानंद से गुणा करते हैं तो जघन्य अनंत अनंत होगा,
उसके ऊपर जो
मध्यम अनंत अनंत के बहुत सारे भेद होते हैं। अभी वो भूल जाओ, अभी यहाँ क्या कहते देखो, विवक्षित समय में
नहीं
इसलिए बताया कि जिसको ही नया है तो ये क्या चल रहा है तो भूल जाओ उसकी बात अभी याद नहीं। विवक्षित समय में ग्रहण किए हुए जो समय प्रबद्ध है, या इसका तो अर्थ समझ में आता है ना, एक समय में जितने परमाणु बनते हैं उसको कहेंगे एक समय प्रबद्ध। वो समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणु वह द्रव्य है। अब बंधने वाले जो समय प्रबद्ध है, एक समय प्रबद्ध की रचना कैसे होती उसको यहाँ समझा रहे हैं। स्थिति में कैसी निषेक रचना होती उसकी बात नहीं, एक समय में बंधे हुए की निषेक रचना बता रहे। तो द्रव्य किसको कहना, पूरे एक समय प्रबद्ध को द्रव्य कहेंगे। टोटल परमाणु, एक समय में बंधे हुए टोटल परमाणु उसको कहेंगे द्रव्य। उसका आबादा रहित स्थिति बंध के समयों का जो प्रमाण वह स्थिति है, यानी जितने निषेक बने हैं उसको स्थिति कहेंगे। कर्म की स्थिति वो स्थिति नहीं चल रही है। जैसे अभी हमने देखा किसी जीव ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध किया तो उसके आबादा तो 7000 वर्ष की हुई और 7000 वर्ष प्लस एक समय वहां पहला निषेक हुआ और टोटल निषेक कितने बने तो 70 कोड़ा कोड़ी में से 7000 वर्षों के समय माइनस करे उतने। परंतु स्थिति अभी ये निषेक रचना में, ये गणित की टर्मिनोलॉजी, यहाँ स्थिति किसको कहना, जितने निषेक बने हैं उसको यहाँ स्थिति, नंबर ऑफ निषेक इस प्रकरण में हो, यानी कि ना आबाधा रहित स्थितिबंध के समयों का जो प्रमाण। स्थितिबंध के समय का अर्थ क्या है, अलग अलग परमाणु में अलग अलग स्थितिबंध हुआ है, स्थिति पड़ी अलग, आबाधा प्लस एक समय प्लस दो समय प्लस तीन समय, इतने अलग अलग स्थितिबंध हुए हैं उसी एक समय में। कहने के लिए जो उत्कृष्ट का स्थिति है उसको हम स्थितिबंध हुआ कहेंगे, परंतु हर समय में एक एक निषेक पड़ा है तो इतने सारे स्थिति के वहां बंध पड़े हैं तो उसको स्थितिबंध का प्रमाण कहा। स्थितिबंध के समयों का जो प्रमाण वह स्थिति है। अभी तक हमने कौन से दो टर्मिनोलॉजी देखी दिव्याबेन, द्रव्य और स्थिति, ये छह जो हमने ऊपर टर्मिनोलॉजी देखनी है उसमें से दो बातें हमने देखी। द्रव्य किसको कहना, तो टोटल बंधे हुए परमाणुओं के समूह को द्रव्य कहा और वहां जितने निषेक बने उसको स्थिति कहा। वहां एक गुणहानि में निषेकों का प्रमाण वह गुणहानि आयाम है। गुणहानि को या गुणहानि आयाम किसको कहना, तो अभी हमने देखा था नीचे के निशे में 512 है, फिर घटते 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 256 हुए, तो 256 हुए वो तो दूसरे गुणहानि में चला गया, उसके नीचे वाला जो निषेक है वहां तक 288, तो उसको क्या कहेंगे, इतने जो निषेक, तो उनकी कितनी संख्या है, तो 8 हमने देखी, 8 बार 6 घटते घटते फिर वो आधा हो, 8 निषेकों को हम क्या कहेंगे, एक गुणहानि, उसी को गुणहानि आयाम कहेंगे। गुणहानि कहो या गुणहानि का आयाम कहो, एक ही बात। स्थिति में गुणहानि का जो प्रमाण वह गुणहानि है, नाना गुणहानि है। जैसे स्थिति मान लो ना 48 समय की है और एक गुणहानि का प्रमाण 8 है तो नाना गुणहानि कितनी होगी, 48 / 8 6 होंगे ना, 6 हो गए। गुणहानि आयाम से दो गुना प्रमाण वह दो गुणहानि है। यदि हम मान लेते गुणहानि आयाम 8 है तो दो गुणहानि 16 हो जाएगी, ये तो हमने मान लिया, काल्पनिक कल्पना की, एक्चुअल में तो वो असंख्यात होते हैं। एक्चुअल में असंख्यात निषेक जाने पर आधा होते हैं संख्या, क्योंकि उसकी संख्या भी अनंतों में। अब देखो हमने दो गुणहानि भी देखी, अभी तक क्या क्या देखा, द्रव्य देखा, स्थिति देखी, गुणहानि का आयाम, जो नंबर ऑफ गुणहानि है उसको नाना गुणहानि कहा, गुणहानि से दो गुना जो प्रमाण है उसको दो गुणहानि कहा। अब एक बात विशेष है, जितनी नाना गुणहानि है, अभी हमारे गणित में हमने मान लिए 6 है नाना गुणहानि, तो दो संख्या 6 बार लिखना, 2 × 2 × 2 करना, नाना गुणहानि कितनी है, छह है तो छह बार दो लिखकर आपस में गुणा करना, 2 raised to 6 कितना होगा? 60 बराबर। इसको कहेंगे अन्योन्य अभ्यस्त राशि। नाना गुणाने का जो प्रमाण है उतनी बार दो संख्या लिखकर आपस में गुणा करना, इसका नाम क्या है? अन्योन्य ने अन्य अन्य अभ्यस्त ने उसका गुणा करना, अन्योन्य अभ्यस्त राशि। फिर यहां से पढ़ेंगे अभ्यस्त राशि, अभ्यस्त ने गुणा गुणा करना, अभ्यस्त करने ने गुणा करना, गुणकार रहेगा। देखो नाना गुणहानि मात्र, यानी नाना गुणहानि जितनी है उतनी बार दो अंक लिखकर परस्पर गुणा करने पर जो प्रमाण होता है वह अन्योन्य अभ्यस्त राशि है। नलिन भाई कौन सी 6 टर्मिनोलॉजी देखी हमने? द्रव्य, स्थिति, गुणहानि आयाम, नाना गुणहानि, दो गुणहानि, अन्योन्य अभ्यस्त राशि। द्रव्य किसको कहा? एक समय प्रबद्ध में जितने परमाणु बंधे उसको द्रव्य का। स्थिति किसको कहे? हाँ, आवाजा के ऊपर जितने निषेक बने एक्चुअली उसको यहाँ स्थिति कहा। गुणहानि किसको कहा? देखो प्रत्येक निषेक में परमाणुओं का प्रमाण घटते घटते, नहीं ऐसा मत कहो, परमाणु की संख्या प्रति निषेक में परमाणु की संख्या घटते चली जाती, जितना घटा ना उसका नाम है चय। उसके बाद अभी यहाँ नहीं लिखी, तो घटते 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 जहाँ आधा हो जाता है वहां तक, यानी उसके पूर्व तक, उसको कहेंगे गुणहानि, उसी को कहेंगे गुणहानि का आयाम। अभी एक गुणहानि हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसी जितने होगी उसको नाना गुणहानि कहेंगे। गुणहानि से दो गुणा करेंगे तो दो गुणहानि कहेंगे, और जो नाना गुणहानि का प्रमाण है उतनी बार दो संख्या लिखकर आपस में गुणा करेंगे तो अन्योन्य अभ्यस्त राशि आएगी। ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई। अब इसमें से परमाणुओं का जो डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा कैसे होता है वो पूरा निकाल के बताएंगे, एक एक निषेक में कितने परमाणु आते हैं, एक कोई काल्पनिक संख्या लेंगे और उसको घटित करके बताएंगे। जैसे मिथ्यात्व का द्रव्य तो अपने समय प्रबद्ध मात्र है, अपना समय प्रबद्ध का मिथ्यात्व की जो एक प्रकृति है उसमें कितना द्रव्य होता है, तो पहले में पहले जो हम समय प्रबद्ध कहते हैं तो उस समय मान लेते 8 कर्म बंधे हैं, तो 8 कर्मों में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो समय प्रबद्ध का मान लेते हैं 8वां भाग। अभी वो हिनादिक होता है उसका प्रमाण भी हमने देखा था, तो ये किसके खाते में आया? मोहनीय के खाते में। मोहनीय के खाते में आया हमने देखा था कि उसका अनंतवा भाग तो सर्वघाती में चला जाता है, सर्वघाती द्रव्य ने मिथ्यात्व और 16 पशाय उसमें चला जाएगा, तो उसका भी यानी 17 में चला जाएगा। अनंत का भाग दिया तो क्या है? सर्वघाती का द्रव्य, उसका 17वां भाग मिथ्यात्व में आया। इसको क्या कहेंगे? मिथ्यात्व का अपना समय प्रबंध, उसके खाते में जो कुछ होता है। तो मिथ्यात्व का द्रव्य तो अपने समय प्रबद्ध मात्र है, ये द्रव्य की बात हुई। ऊपर जो जो संज्ञाएं आई है, नाम बताए हैं, उसको यहाँ फिर दोबारा मिथ्यात्व पर बताते हैं। स्थिति, स्थिति किसको कहना? जितने निषेक बने, कितने बने? तो 7000 वर्षों से हीन 70 कोड़ाकोड़ी सागर, क्योंकि 7000 वर्ष की आबादा है उसमें कोई निषेक नहीं बने थे, आबादा के ऊपर निषेक रचना हुई है। तो जितने निषेक बने, कितने बने? 70 कोड़ाकोड़ी सागर के जितने समय है उसमें से 7000 वर्षों के समय माइनस कर उतने निषेक बने, उसको कहेंगे स्थिति। स्थिति को नाना गुणहानि से भाग देने पर जो प्रमाण होता है उतना गुणहानि आयाम है। अभी हमने 48 माना था ना, ये अंतर्मुहूर्त के लिए 48 नहीं कहा, ये 48 समय है, मिनट की बात नहीं है। हमने निषेक मान लिए है, उदाहरण यानी गणित समझाने के लिए हमने काल्पनिक संख्या मान ली, तो हमने 48 में नाना गुणहानी 6 मानी है, तो गुणहानी का आयाम कितना होगा? 8 होगा। 48 को 6 से भाग दो तो गुणहानी का आयाम होगा, 48 को गुणहानी आयाम से भाग देंगे तो नाना गुणहानी होगी। तो यहाँ कहते हैं स्थिति को नाना गुणहानी का भाग देने पर जो प्रमाण होता है उतना गुणहानी आयाम है। तो कहते नाना गुणहानी कितनी होती है, तो एक्चुअल में बताया है। अभी ये बात अभी नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कर्मकांड में ये विषय हुआ था, और फिर भी जहां इसका विषय आएगा वहां फिर भी दोबारा समझेंगे। तो कहते पल्ले के अर्धच्छेदों में से, अभी इसका अर्ध देखते, अर्धच्छेद किसको कहना, किसी भी संख्या को दो से भाग देते जाओ तो जितनी बार भाग देंगे ना, जैसे 16 संख्या है, दो से भाग दिया 8 आए, फिर दो से भाग दिया 4 आए, फिर दो से भाग दिया 2 आए, फिर दो से भाग दिया 1 आया, तो 1 आने तक हम कितने बार दिया, तो 4 बार, तो 4 ये 16 का अर्धच्छेद है। यानी दो संख्या आपस में गुणा करने पर जो संख्या आती है ना, तो कितनी बार दो लिखना उसको अर्धच्छेद कहेंगे उस संख्या का। जैसे हमारे पास 4 संख्या है तो उसके अर्धच्छेद कितने हैं, 2। 8 के अर्धच्छेद 3। 16 के अर्धच्छेद अभी हमने देखे थे 4। 16 का वर्ग करो 256, उसके अर्धच्छेद 8, तो इसको अर्धच्छेद कहना। यहाँ किसकी बात है, पल्ले के अर्धच्छेद, पल्ले जो संख्या है वो कौन, उसके अर्धच्छेद प्रमाण दो संख्या लिखकर गुणा करेंगे तो पल्ले संख्या है। तो पल्ले के अर्धच्छेदों में से पल्ले की वर्गशलाका के अर्धच्छेद घटाने पर, वर्गशलाका का अर्थ हमने देखा था, एक होती है द्विरूप वर्ग धारा, इसको कल ही देखना पड़ेगा, फिर भी अभी वर्गशलाका किसको कहना वो देख लेते हैं। एक सीक्वेंस है द्विरूप वर्ग धारा, दो का वर्ग स्क्वायर 4 होता है, यहां से ये सीक्वेंस चालू होगा, धारा पार, जैसे हम कहते हैं, जैसे हम दो दो दूनी चार, दो त्री, कैसे कहते हैं ना, अभी यहाँ क्या होगा, इसका वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग, स्टार्टिंग फिगर 2 का वर्ग, तो 4 ये पहला वर्ग है, 4 का वर्ग 16 का वर्ग 256 का वर्ग होता है 65,536, ये 4 नंबर पर आया यहाँ पर। अब यहाँ क्या कहते हैं, वर्गशला का किसको कहना, वर्गशला का यानी द्विरूप वर्ग धारा में जो जिसकी बात कर रहे हैं उसका वर्ग स्थान नंबर कौन से स्थान पर है उसको कहेंगे उसकी वर्गशला का। जैसे 16 की वर्गशला का 2 है, 256 की वर्गशला का 3 है, 65,536 की वर्गशला का 4। अब ऐसे आगे बढ़ते चले जाओ तो असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले नाम की संख्या आती है, ये पल्ले के लिए लिखेंगे हम, कितने स्थान चले गए वर्ग असंख्यात, तब पल्ले आएगा, तो वो जो संख्या उसको हम वो लिखेंगे, वो नंबर के स्थान पर पल्ले आता है। जैसे 4 नंबर पर पनट्ठी आती है 65,536, या 3 स्थान पर 256 आता है, वैसे वो हमने उसको नाम दिया है, वह स्थान पर पल्ले आता है। और पल्ले के अर्धच्छेद के लिए हम क्या लिखते हैं, 6। तो पल्ले के अर्धच्छेद में से ये जो वह संख्या है ना उसके अर्धच्छेद निकालो, उसके अर्धच्छेद माइनस करेंगे तो जो संख्या आएगी उसको हम कहेंगे ने मिथ्यात्व की नाना गुणहानि है। इसकी बात हम कर लेंगे फिर दोबारा, और फिर आगे बढ़ेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे नो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देव।